एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन में कह सकते हैं उतर रहे हैं जिनकी कूची ने, जिनकी रेखाओं ने दशकों तक भारत की कहानी कही। हम बात कर रहे हैं आर के लक्ष्मण और उनकी आत्मकथा द टनल ऑफ टाइम की।
हाँ, द टनल ऑफ टाइम, ये किताब 1998 में आई थी और इसमें लक्ष्मण जी के जीवन के कोई 7 दशक, मतलब पूरी 20वीं सदी ही लगभग सिमटी हुई है।
और ये सिर्फ एक यादों का संकलन नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, मतलब आर के लक्ष्मण, जो 1921 से 2015 तक रहे, उन्होंने इसमें अपने अनुभवों के जरिए कला, समाज, राजनीति, इन सब पर बहुत गहरे विचार रखे हैं। वो सिर्फ कार्टूनिस्ट नहीं थे।
हाँ, एक तरह से कमेंटेटर थे समाज के।
बिल्कुल, भारत की अंतरात्मा के व्याख्याकार कह लीजिए। और जरा सोचिए, वो वक्त भी तो कितना अहम था।
हाँ, वो पूरा बदलाव का दौर, कॉलोनियल रूल से आजादी, फिर नए भारत का बनना,
उन्होंने सब देखा। और उनका जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो है उनका किरदार कॉमन मैन, आम आदमी।
वही आम आदमी जिसने करोड़ों लोगों को आवाज दी जो बोल नहीं पाते थे।
सही कहा, उनकी कहानी सिर्फ एक कलाकार की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे ह्यूमर और सटायर, मतलब हास्य और व्यंग्य के जरिए सच कहने का उनका जो कमिटमेंट था, उसने उन्हें भारतीय समाज का एक जरूरी हिस्सा बना दिया।
उनकी जिंदगी की कहानी और 20वीं सदी के भारत की कहानी जैसे साथ साथ चलती हैं।
हाँ, और आज भी उनका काम देखिए कितना प्रासंगिक है। सत्ता पर सवाल, ब्यूरोक्रेसी पर कटाक्ष, आम आदमी की सहन शक्ति, ये मुद्दे तो हमेशा रहेंगे।
तो चलिए इस सफर को शुरू से देखते हैं। उनके शुरुआती साल 1920-30 का दशक, मैसूर में जन्म हुआ था।
जी, एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में, 6 भाई थे, ये सबसे छोटे थे। पिता स्कूल हेडमास्टर थे, तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल,
अनुशासन भी रहा होगा फिर तो।
हाँ, और माँ थी जो बहुत प्रैक्टिकल और तेज दिमाग की थी। और हाँ, बड़े भाई आर के नारायण, इतने बड़े उपन्यासकार।
हाँ, उनका असर तो जरूर पड़ा होगा, घर में लिटरेचर, विचारों की बातें होती होंगी।
बिल्कुल, वो माहौल ही ऐसा था। और फिर मैसूर शहर, उस वक्त का मैसूर भी एक खास जगह थी।
हाँ, जहाँ पुरानी परंपराएं भी थीं और नई तालीम भी आ रही थी।
और लक्ष्मण साहब को बचपन से ही गजब का शौक था स्केचिंग का। दीवारें, कॉपी, फर्श, जहाँ जगह मिली बना दिया।
क्या बनाते थे शुरू में?
वही जो आसपास देखता था, घर के लोग, गली के वेंडर्स, भिखारी और खासकर कौवे।
कौवे, वो क्यों?
पता नहीं, उन्हें उनमें खास कैरेक्टर, ड्रामा, ह्यूमर दिखता था। ये छोटी छोटी चीजों को गौर से देखने की आदत शायद तभी से पड़ी। एक किस्सा भी है, स्कूल में एक टीचर ने उनके बनाए पीपल के पत्ते की ड्राइंग की बहुत तारीफ की थी।
अच्छा, वो शायद पहली पहचान थी।
हाँ, पहली बाहरी तारीफ जिसने शायद अंदर के कलाकार को जगा दिया हो।
लेकिन स्कूल की पढ़ाई में तो मन नहीं लगता था उनका, सुना है रटने वाली चीजें उन्हें पसंद नहीं थी।
हाँ, कला के अलावा बाकी सब जैसे ठीक है, चल रहा है। और फिर वो बड़ी बात हुई, बॉम्बे के जे स्कूल ऑफ आर्ट ने एडमिशन देने से मना कर दिया।
अरे क्यों?
कहा कि भाई, आपके चित्रों में टैलेंट की कमी है। सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा।
जाहिर है, पर शायद ये अच्छा ही हुआ।
कह सकते हैं, मतलब इस रिजेक्शन ने उन्हें किसी बने बनाए ढांचे में फिट होने से बचा लिया। उन्होंने अपनी स्टाइल खुद बनानी शुरू की।
तो फिर उन्होंने फॉर्मल आर्ट एजुकेशन नहीं ली?
नहीं, वो मैसूर के महाराजा कॉलेज गए, वहां राजनीति, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी पढ़ी। लेकिन असली पढ़ाई तो क्लास के बाहर ही चल रही थी,
लोगों को देखना, समझना
और विदेशी मैगजीन्स देखना, पंच, द स्ट्रैंड, उनमें डेविड लो जैसे कार्टूनिस्टों का काम देखना, वो उनकी असली यूनिवर्सिटी थी।
और तभी से छोटे मोटे कार्टून बनाने भी लगे थे।
जी, लोकल अखबारों के लिए स्वराज था, एक ह्यूमर मैगजीन थी कुरवंजी उनके लिए, और देश में आजादी का आंदोलन भी तो चल रहा था उसी समय।
हाँ, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन,
वो सब देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, पर एक्टिविस्ट नहीं बने। उन्होंने इन सबको अपने आर्टिस्ट के नजरिए से देखा।
फिर आया प्रोफेशनल करियर का दौर, 40 का दशक, बॉम्बे गए।
हाँ, द फ्री प्रेस जर्नल में स्टाफ आर्टिस्ट लगे। और मजे की बात यह है कि बाल ठाकरे भी वहीं थे उनके साथ।
अच्छा, ये तो दिलचस्प है।
हाँ, फिर कुछ समय दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स में रहे। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था, जो सबसे बड़ा ब्रेक था, वो 1947 में मिला,
द टाइम्स ऑफ इंडिया।
बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे, यहाँ उन्हें स्थिरता मिली, एक बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म मिला, और सबसे जरूरी चीज, एडिटोरियल फ्रीडम, पूरी आजादी,
जो किसी भी सेटायरिस्ट के लिए ऑक्सीजन है
एकदम। और यहीं से शुरू हुआ उनका रोज वाला पॉकेट कार्टून यू सेड इट।
और फिर 1951 में जन्म हुआ उस ऐतिहासिक किरदार का द कॉमन मैन।
हाँ, वो धोती, चेक वाला कोट, उलझे बाल और बिल्कुल खामोश, मूक दर्शक।
पर उसकी खामोशी में ही सब कुछ था।
वही तो, वो भीड़ में होकर भी भीड़ से अलग था। सब देखता, समझता, पर बोलता कुछ नहीं। उसकी यही चुप्पी उसका सबसे बड़ा स्टेटमेंट बन गई। और ये किरदार लक्ष्मण के लिए टूल बन गया रोज की पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन सब पर कमेंट करने का।
और देखते ही देखते वो एक नेशनल सिंबल बन गया।
बिल्कुल, 50 साल से ज्यादा रोज। आप सोचिए, नेहरू के जमाने से लेकर वाजपेयी जी तक कितने पीएम, कितने दौर उन्होंने अपने कार्टूनों में कैप्चर किए।
और सिर्फ कार्टून ही नहीं, किताबों के इलस्ट्रेशंस भी तो किए उन्होंने, खासकर आर के नारायण की किताबों के।
हाँ, मालगुडी की दुनिया को जैसे उन्होंने ही साकार किया था। और वो एशियन पेंट्स का गट्टू, वो भी तो उन्हीं की देन है।
हाँ, वो भी। और इमरजेंसी का दौर भी तो था, तब कैसे काम किया उन्होंने, सेंसरशिप का डर रहा होगा।
सूक्ष्म तरीके से अपनी बात कहते रहे। वो एक कार्टून था ना उनका, जिसमें कॉमन मैन शीशे में देख रहा है और उसे अपना अक्स जेल की सलाखों के पीछे दिखता है।
बिना कुछ कहे ही सब कह दिया।
बिल्कुल, बाद के सालों में उन्होंने लिखा भी काफी, ट्रेवलॉग्स, नॉवल, द होटल रिवियरा, शॉर्ट स्टोरीज, द मैसेंजर।
और 2003 में स्ट्रोक आया उन्हें, उसके बाद भी काम करते रहे।
हाँ, मुश्किलें आई पर जज्बा कम नहीं हुआ, बनाते रहे। उनकी लेगेसी सिर्फ हजारों कार्टून्स नहीं है, उन्होंने इंडिया में एडिटोरियल कार्टूनिंग को एक सीरियस सोशल और पॉलिटिकल एनालिसिस का दर्जा दिलाया। उनका काम मतलब 20वीं सदी के भारत की एक विजुअल हिस्ट्री है।
अगर उनके नजरिए को, उनकी सोच को समझना हो तो क्या कहेंगे, क्या था उनका मूल दर्शन?
मुझे लगता है ऑब्जर्वेशनल ह्यूमनिज्म कह सकते हैं। मतलब आम लोगों के लिए उनके स्ट्रगल के लिए गहरी हमदर्दी थी उनमें।
और सत्ता के लिए एक संदेह, मतलब वो नेताओं अफसरों को बहुत ऊंचा नहीं मानते थे।
हाँ, उन्हें भी आम इंसानों की तरह देखते थे, अपनी कमजोरियों, अपनी कभी कभी मजाकिया लगने वाली हरकतों के साथ। उनका कॉमन मैन इसी नजरिए का तो प्रतीक था। वो देखता था सब, पर जजमेंटल नहीं होता था।
और उनके काम में यूनिवर्सल अपील भी थी, है ना। मुद्दे भले ही भारतीय थे, पर वो लालच, भ्रष्टाचार, इनएफिशिएंसी, ये सब तो हर जगह है।
सही बात है।
वो किसी आइडियोलॉजी से बंधे नहीं थे। उनका मकसद था समाज को आईना दिखाना,
साफ साफ, पर एक समझ के साथ।
क्या चीज थी जो उन्हें रोज मोटिवेट करती थी? ये सिर्फ एक जॉब तो नहीं हो सकती थी?
नहीं, ये जॉब से बहुत ज्यादा था। एक तो बनाने की इच्छा, वो अंदर से आती थी। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही बनाना जरूरी था उनके लिए। दूसरा, ऑब्जर्वेशन का रोमांच, उन्हें लोगों को देखने में, उनके व्यवहार को पकड़ने में मजा आता था। दुनिया उनके लिए जैसे एक रॉ मटेरियल थी।
और सच कहने की इच्छा, न कि किसी का पक्ष लेने की।
बिल्कुल, क्लैरिटी लाना चाहते थे, कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, एक और बात, शायद उन लाखों करोड़ों लोगों को आवाज देना जिनकी कोई नहीं सुनता, कॉमन मैन के जरिए वो उनकी बात कहते थे।
मुश्किलों को कैसे झेलते थे, जैसे वो जे स्कूल वाली बात हुई।
उनका तरीका था लचीलापन और ह्यूमर। वो रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म पर रोते नहीं थे, बल्कि उसे भी हल्के फुल्के अंदाज में लेते थे। जे स्कूल ने मना किया तो ठीक है, उन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया। उनमें सेल्फ पिटी नहीं थी, एक शांत किस्म की दृढ़ता थी।
उनकी इतनी लंबी जिंदगी में कई मोड़ आए होंगे, अगर 3 सबसे खास, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हो तो कौन से होंगे?
चुनना तो मुश्किल है, पर पहला शायद मैं उसी जे स्कूल वाले रिजेक्शन को मानूंगी, 1939 में।
हाँ, देश के टॉप आर्ट स्कूल से ये सुनना कि आप में टैलेंट नहीं, ये तो हौसला तोड़ सकता था।
बिल्कुल, इसने फॉर्मल आर्ट एजुकेशन का दरवाजा बंद कर दिया, पर शायद इसने उन्हें आजाद कर दिया अपनी यूनिक स्टाइल बनाने के लिए। और शायद इंस्टीट्यूशंस पर एक शक भी पैदा किया, जो उनके सटायर में दिखता है, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ।
ब्लेसिंग इन डिसगाइज
कह सकते हैं। दूसरा बड़ा मोड़ मेरे ख्याल से 1947 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन करना था।
हाँ, वो स्थिरता, वो प्लेटफॉर्म, वो आजादी।
वही, फ्री प्रेस जर्नल या हिंदुस्तान टाइम्स में वो बात नहीं थी। टाइम्स ने उन्हें वो कैनवस दिया जहाँ वो खुलकर खेल सके, 50 साल से ज्यादा।
और इसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना मास्टरपीस रचा यू सेड इट, और फिर कॉमन मैन, यहीं से वो नेशनल फिगर बने।
और तीसरा टर्निंग पॉइंट जाहिर है 1951 में कॉमन मैन का जन्म। ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, ये लक्ष्मण के पूरे फिलॉसफी का निचोड़ था।
हाँ, वो मूक दर्शक उनकी पूरी सोच को जैसे समेट लेता था, तटस्थ, हमदर्द, गैर तरफदार।
और इस किरदार ने उन्हें कार्टूनिस्ट से उठा के एक नेशनल आइकॉन बना दिया। वो कॉमन मैन जैसे लक्ष्मण का पर्याय बन गया और लाखों भारतीयों का भी। उसने उन्हें नेशनल डिस्कोर्स में एक यूनिक आवाज दी जो पावरफुल थी पर जेंटल भी, क्रिटिकल थी पर प्यारी भी।
लक्ष्मण की जिंदगी से हम आज क्या सीख सकते हैं?
बहुत कुछ है वैसे तो।
हाँ।
पहली बात तो वही, रिजेक्शन से डरना नहीं। शुरुआती फेलियर्स अक्सर हमें हमारी असली मंजिल दिखा सकता है अगर हम हिम्मत ना हारें।
और ध्यान से देखना, उनकी सारी कला उस बारीक ऑब्जर्वेशन में थी। ये सिखाता है कि रोजमर्रा की चीजों पर ध्यान देना कितना जरूरी है।
बिल्कुल। और ईमानदारी, अपने उसूलों पर टिके रहना, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसी इंटेग्रिटी ने उन्हें वो इज्जत दिलाई। ये बताता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कैरेक्टर कितना जरूरी है।
और ह्यूमर को सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक समझ, एक फिलॉसफी की तरह देखना। उनका सटायर मुश्किलों से डील करने का एक मैच्योर तरीका था। ह्यूमर सिर्फ हंसाता नहीं, वो आपको चीजों को अलग नजरिए से दिखाता है।
और ये भी कि आर्ट सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, ये समाज के लिए भी कुछ कर सकती है, एक सर्विस हो सकती है।
आज के जमाने में जब इतना पोलराइजेशन है, इतनी चीख चिल्लाहट है, लक्ष्मण का तरीका कितना रेलेवेंट लगता है।
बहुत ज्यादा। वो सम्मान के साथ असहमति जताना, क्रिएटिव तरीके से क्रिटिसाइज करना, ये आज बहुत जरूरी है।
और आम आदमी के पर्सपेक्टिव को हमेशा सेंटर में रखना, ये भी आज कितना जरूरी है। और कैसे उन्होंने बदलते वक्त के साथ खुद को अडैप्ट किया पर अपने कोर वैल्यूज नहीं छोड़े।
हाँ, ये भी सीखने वाली बात है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का विजन एक स्थायी सामाजिक प्रभाव डाल सकता है।
तो इस पूरी बातचीत से अगर तीन मुख्य बातें लेकर जानी हो, निचोड़ जिसे कहें, तो वो क्या होंगी?
पहली, एक भावनात्मक सीख या इमोशनल इंसाइट कह लें। ह्यूमर यानी हास्य जिंदगी की मुश्किलों और समाज की अजीब बातों से निपटने का एक बहुत ताकतवर कवच हो सकता है। यह हमें बिना कड़वे हुए सच देखने और कहने में मदद करता है।
दूसरी, एक बौद्धिक सीख। सबसे असरदार सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री अक्सर किसी पक्षपात वाली सोच से नहीं बल्कि एक न्यूट्रल, हमदर्दी भरे ऑब्जर्वेशन से आती है। कॉमन मैन की जो अपील है वो इसी न्यूट्रल, एम्पैथेटिक नजरिए में है।
और तीसरी, एक यूनिवर्सल सीख। शुरुआती फेलियर या रिजेक्शन अंत नहीं है, ये अक्सर हमें एक ज्यादा सही, ज्यादा सच्चे रास्ते पर ले जाने का तरीका होता है अगर हम शांति, दृढ़ता और खुद पर यकीन के साथ उसका सामना करें।
आज जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहा है, चिल्ला रहा है, शायद आरके लक्ष्मण के कॉमन मैन की वो खामोश, सब देखते समझती नजर हमें कुछ जरूरी चीजें याद दिला सकती हैं।
हाँ, धैर्य, टॉलरेंस और बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाने की कला।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।